कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के हम 49 नंबर की जो गाथा देख रहे हैं वो अलिंग ग्रहण गाथा से प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी विशेषता तो हम जानते हैं कि यह जो गाथा है वो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपौर, यानी ये सब ग्रंथ जो कुंदाचार्य ने लिखे हुए हैं इन सभी में है। गोमट सार में भी यह गाथा है, धवला में भी। तो ये सब जो बातें हैं तो इससे ये पता लगता है कि ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। ये पृष्ठ क्रमांक 62 निकालना बेन, पुराना पुस्तक है ना 62। हाँ वहाँ देखो, यहाँ पर पहले ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि ये अध्यवसान आदि जो भाव है वो आत्मा नहीं है ऐसा आपने कहा है, तो फिर ये आत्मा जिसका हमें आश्रय लेना है, जिसका हमें अवलंबन लेना है और जिसमें हमें एकाग्र होना है, वो आत्मा है तो कौन सी चीज है, ये आत्मा कैसा होता है? तो यहाँ आचार्यों ने उसको अरस वगैरह वगैरह, गंध, अस्पर्श आदि बता के अलिंग ग्रहण आदि है और संस्थान से रहित है, इस तरह से बात की थी। अब वो तो हमने उसकी टीका भी पढ़ ली थी और हम 8-10 दिन पहले पृष्ठ क्रमांक 61 पर आए थे, लेकिन उसके आगे अभी जो श्लोक है, जो 35 नंबर का श्लोक, वो हमें आज ही नहीं देखना, इसलिए अभी डायरेक्ट स्वामी जी क्या कहते हैं वो हम पृष्ठ क्रमांक 62 से देखने जाएंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, गाथा 49 टीका ऊपर नु प्रवचन मिल गया सबको, मथाड़ू पढ़ लूं? चलो मथाड़ू पढ़ी लिए। हाँ, प्रभु आप जा रहे एम कहो छो के पुण्य पाप ना भाव ए आत्मा नथी, तो आत्मा छे के वो। पाछली गाथा में एम कहूं के अनेक प्रकार ना राग मा जीव व्याप्तो नथी, जीव तो एक स्वरूप ज छे। कैसा है जीव? एक स्वरूप ही है और ये जो राग है वो अनेक प्रकार के हैं। अगर वो अनेक प्रकार में व्याप्त हो जाए तो जीव भी अनेक प्रकार का हो जाएगा, इसलिए कहते तो ते जीवनु स्वरूप शू छे। ये पुण्य पाप ना भाव, सुख दुख नी कल्पना ना भाव, कर्म अने आत्मा बन्ने एक हुआनो भाव इत्यादि अध्यवसान आदि भावो जीव नथी। अब क्या कह रहे हैं, ये पुण्य और जीव एक समझना, पाप और जीव एक समझना, सुख और दुख ये जो इनके जो परिणाम हो रहे हैं उस परिणाम और आत्मा के ये सब परिणाम है और आत्मा ही वह है ऐसा मानना, कर्म और आत्मा एक है ऐसा मानना, ये सब जो ऐसे जो भाव है वो कहते हैं इनको उन्होंने इन शॉर्ट अध्यवसान आदि भाव कहा गया है। यानी जो मोह राग द्वेष सहित वाले जो एकत्व परिणाम है इसको यहाँ अध्यवसान भाव ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं ये अध्यवसान आदि जो भाव है वे वह भाव जो है वह जीव नहीं है तो क्या है? तो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव केवो छे, तो आप ये सब बता रहे थे। तो आप जो जीव कैसा है तो एक है, टंकोत्कीर्ण है यानी टाकी से उकेरे हुए ऐसा उसका जो कायम रहने वाला ध्रुव स्वभाव है, ऐसा जो परमार्थ स्वरूप जीव का जो है, तो ऐसा जीव कैसा है? केवो छे आवो शिष्यनो प्रश्न छे तेना उत्तर रूपे गाथा कहे छे। अब वो गाथा किस लिए कही गई है इसका हमें यहाँ विवरण दिया है। अब कहते हैं देखो यहाँ बात आई है आ गाथा, एटले आप अहियाँ जे 49 नंबर नी गाथा छे ए गाथा श्री समयसार, श्री प्रवचनसार, श्री नियमसार, श्री पंचास्ती काय, श्री अष्टपाहुड़, ये तो सारे पांचों ही पांच परमागम जो है वो तो कुंद कुंद आचार्य ने लिखे हुए हैं और इन सब में यह गाथा पाई जाती है। इसके साथ साथ श्री धवल एम अनेक शास्त्रों में छे, ये गाथा हर एक शास्त्र में बताई गई है। गाथा मां जान शब्द पढ़ियो छे, ए शब्द द्वारा श्री कुंद कुंद आचार्य देव शिष्य ने एम कहे छे के हे भाई तू आत्मा ने आवो जान, यानी जब तक हम आत्मा का स्वरूप नहीं जानते तो आत्मा को कैसा जानेंगे? क्योंकि जिसे जानना है, जिसे अपना स्वरूप मानना है, तो स्वरूप की पहचान भी तो होनी चाहिए, जानकारी भी तो होनी चाहिए। इसलिए पहले वहाँ जो शब्द पड़ा हुआ है तो कहते कि जान, ऐसा वहाँ आदेश दिया है कि ये ऐसे तेरे स्वभाव, तेरा स्वयं का स्वभाव ऐसा है, ऐसा वहाँ पर बताया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं तू आत्मा ने आवो जान, तो आवो तो केवो थे, तो ई बात अत्यारे हवे वहाँ बतावशे।
देखो यहाँ जो धवल नाम लिखा है ना शास्त्र का, उसमें भी उन्होंने कुंद कुंदाचार्य को कोट किया है, उद्धरण दिया है, क्योंकि कहते हैं कि कुंद कुंदाचार्य प्रवचन सार में ऐसा कहते हैं कहकर उन्होंने ये गाथा लिखी है। तो धवल शास्त्र तो बाद में हुआ है, कुंद कुंदाचार्य तो पहली सदी में हो गए और ये 800 साल बाद ये रचना हुई धवल की, यानी कुंद कुंदाचार्य ने ये ओरिजिनली गाथा लिखी है जो धवला ग्रंथ में भी बाद में लिखी हुई थी। कुंद कुंदाचार्य ने षटखंडागम पर परिक्रम नाम की टीका लिखी थी पहले 3 खंडों पर, जो अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु उसका उद्धरण धवला ग्रंथ में भी बार बार दिया है।
गाथा 49 टीका ऊपर नु प्रवचन, जे जीव छे ते खरेखर पुद्गल द्रव्य थी अन्य हुआ थी, यानी क्या यह जीव है वह पुद्गल द्रव्य से अन्य है ऐसा कहने में आ रहा है, तो ये अन्य है ये कैसा हम सिद्ध करेंगे? तेजल बेन आप बताएंगे। बहुत अच्छा, दूसरा कौन सा कारण होगा? दोनों का स्वचतुष्ट भिन्न है, और तीसरा कारण क्या होगा लक्ष्मी बेन? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, और चौथा? सौभागमल जी आप बताएंगे। हाँ वो भिन्न है, उसी को हमें बताना है, हमें ऐसा वो जो स्वतंत्रता जो है उसका हम कारण पूछ रहे हैं। इन्होंने बताया दोनों में अत्यंत अभाव है, इन्होंने बताया क्या बताया बहन? स्वचतुष्टय की भिन्नता है, दोनों स्वचतुष्टय अलग अलग है। आपने कहा कि दोनों का स्वभाव जुदा है, लक्षण जुदे है, तो आपको तो कुछ कहो, दो जुदे हैं हम तो मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी मानेंगे कि आपने कहा और हमने सुना, हमारे पास कोई सबूत चाहिए ना समझने के लिए। हाँ कौन बताएगा? बताया, हाँ इन्होंने बताया, हाँ स्वभाव फर्क है। देखो देखो अभी जास्ती हम टाइम नहीं गवाएंगे कि जीव की अस्थि जीव में है और जीव की नास्थि पुद्गल में है, अस्थि नास्ति है ना, ऐसा हमने देखा है कि इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता है, ये हमें पहले बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ जो हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं या तो यहाँ जो कोई हम गुण देखने जा रहे हैं तो वो आत्मा में क्यों नहीं है, आत्मा में गुण गंध गुण क्यों नहीं है, क्योंकि वह अगंध स्वभावी है, ऐसी जो बात आएगी उसका मूल कारण क्या है कि दोनों में भिन्नता है। हाँ,
गुरु लघु तो गुण भी होता है ना। हाँ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता। हाँ।
बिल्कुल, मतलब अनेक कारण
बहुत है। सारे हैं सिद्धांत। हाँ। उसमें ये भी एक है। हाँ।
जैसा हमने एक दफे याद है आपको कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, यानी दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, इसको हमने सबसे लिखवाया था। आप ठीक है नहीं उस समय? नहीं थी तो बहुतों ने 16-16, 17-17 पॉइंट लिख के लाए थे। हाँ? ऐसा कभी करेंगे अभी आगे जाके? तो इसमें क्या है, हमारी मजबूताई होती है, श्रद्धा में कोई ऐसी खिटपिट नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास इतने कारण है ना, और वो भी शास्त्र के आधार से है कि हमने बनाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते क्या कह रहे, देखें, जे जीव छे ते खरेखर यानी इन रियलिटी यानी निश्चय से उद्गल द्रव्य थी अन्य होवा थी तेमा रसगुण विद्यमान नथी माटे अरस छे। अभी ये अभी यहाँ गाथा में बताया ना कि आत्मा कैसा है, तो कहते अरस है। तो ये रस यानी अरस यह आत्मा का गुण है और पुद्गल का कौन सा है, रस गुण है। तो अरस नाम का गुण पुद्गल में नहीं होगा और रस नाम का गुण आत्मा में नहीं होगा। इसलिए समझा रहे दोनों द्रव्य अलग अलग है, तो जो अलग रसगुण नाम का अलग गुण जो है, रसगुण नाम का गुण है, वह जीव में नहीं है। इसके लिए हम क्या विचार कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रस नाम का गुण जीव द्रव्य में नहीं है? हाँ बोलो ब्रह्मा। शाबाश, तो विशेष गुण किसे कहते हैं? नहीं पाए जाते क्या? पाए जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा, और अपने अपने द्रव्य में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। तो इन्होंने जो बताया कि पुद्गल द्रव्य का वह विशेष गुण है इसलिए अन्य द्रव्य में नहीं होगा, तो ये अरस का अरस नाम का जो गुण है तो वो कैसा गुण है बेन, सामान्य है क्या विशेष है? विशेष। आप क्या कहते हैं? विशेष है। हाँ बहुत अच्छा, देखो देखो सुनना सुनना, देखो जैसा हम देखते हैं ना कि पुद्गल द्रव्य कैसा है तो कहते रूपी द्रव्य है, और आत्मा कैसा है, अरूपी है। तो फिर एक आत्मा ही अरूपी है, अन्य चार द्रव्य जो है कौन कौन से, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकार द्रव्य और काल द्रव्य कैसे है, वे भी अरूपी है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो उसे सामान्य गुण कहेंगे पांच की अपेक्षा से, लेकिन जब पुद्गल के साथ हम उसकी तुलना करते हैं तो नहीं, नहीं ये जीव का विशेष गुण है और वो उसका। इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन दोनों अपेक्षाएं अपने ख्याल में रहनी चाहिए। तो यहां जो अरस कहा गया है तो सिर्फ अरसपना जीव में ही विद्यमान है ऐसा मत समझना, और किस में विद्यमान होगा अरसपना? और जीव। हाँ तो पांच में नहीं है, ये तो बात नक्की हो गई, ख्याल में आया बेन? आप ही ने तो बताया है ना, बहुत अच्छा। क्या कह रहे देखो, माटे अरस छे कौन, आत्मा। खरेखर अर्थात यथार्थपने आत्मा पुद्गल द्रव्य थी अन्य एटले जुदो छे, परमार्थे आत्मा ने पुद्गल द्रव्य साथे काई संबंध नथी। अभी देखो क्या कहते, परमार्थे यानी निश्चय से ये जो आत्मा है उसका और पुद्गल द्रव्य में कोई भी संबंध नहीं है। तो आप इसमें और कोई व्यवहार से कोई संबंध बता पाएंगे? हाँ अरविंद भाई आप बताएं। बहुत अच्छा, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा हम आगे पीछे करेंगे ना तो ख्याल में आ जाएगा। देखो उन्होंने और एक बता दिया, कौन सा बताया आपने सुना?
एक क्षेत्रावगाह संबंध।
एक क्षेत्रावगाह संबंध यानी क्या होता है? हाँ, एक क्षेत्र में ही अवगाहना है, हा? तो ऐसे कितने द्रव्यों की एक क्षेत्रावगाह संबंध होगा? बहुत अच्छा, शाबाश। अभी दोबारा अमेरिका जाएंगे हम, सिद्धांत जोशी का सुनना। देखो कितना फायदा होता है कि नहीं। हाँ, तुमको लगता था टैक्सेशन हो रहा है, ये क्या है? ये जो बेसिक बात है वो बेसिक बात हमारे ख्याल में आती है, तो यहाँ पर जो स्वामी जी बार बार जो कुछ बात बताते हैं वो ऐसा हमें आंख बंद करके स्वामी जी कहते हैं ना, प्रमाण वचन गुरुदेव, वो तो भाई उनके प्रति आदर तो बिल्कुल होना ही चाहिए, होता ही है, कहना नहीं पड़ता कि तुम मुझे नमस्कार करो, वो तो अपने हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं तो क्यों कहते हैं, ये भी तो बात समझना अपना कर्तव्य है, ख्याल में है ना? तो यहां जो कह रहे हैं कि परमार्थ है, यानी सच कहा जाए तो वास्तविकता तो ऐसी ही है कि आत्मा ने पुद्गल द्रव्य साथ काई संबंध नहीं, शरीर ने कर्म साथ आत्मा ने जे निमित्त नैमित्तिक संबंध छे ते व्यवहार छे, यानी उन दोनों का संबंध है ऐसा कहना यह व्यवहार ने का कथन है। ते ध्यान करवा माटे छे पण आश्रय करवा माटे नथी, यानी उस संबंध से वो बस जानने के लिए है, उसका हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। आश्रय करवा माटे तो एक त्रिकाणी ध्रुव आत्मा जो छे, यानी जो कायम टिकने वाला ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा है उसी का हमें आश्रय अवलंबन लेना चाहिए। आई कहे छे के जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य थी अन्य हुआ थी तेमा रसगुण विद्यमान नथी, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मा अतीन्द्रिय आनंद नो एटले चैतन्य नो रस छे, पण पुद्गल नो जड़ रस आत्मा मा नथी, माटे आत्मा अरस छे। देखो अभी यहां उन्होंने एक और नया नई बात बताई है, क्या कह रहे हैं? जो आत्मा कैसा है, तो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप यानी जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे जो भगवान आत्मा, तो ये भगवान आत्मा कौन से भगवान आत्मा की बात चल रही, कौन सा भगवान है ये? प्रत्येक जीव का अपना अपना, जब जब भगवान आत्मा कहेंगे तब तक वह त्रिकाली स्वभाव में ऐसा जो आत्मा है वो किसका होगा? हर जीव का होगा, उसकी बात कह रहे। भगवान आत्मा कहने से वह जो त्रिकाली शुद्ध स्वरूपी जो आत्मा का स्वभाव है उस अपने आत्मा की बात कह रहे हैं। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मां क्या ऐसा है? अतीन्द्रिय रस छे, तो अतीन्द्रिय क्या क्या होगा? अभी हमने प्रवचन में प्रवचन सार में पढ़ा था, अतीन्द्रिय दो बातों का नाम दिया था, याद है? हाँ, ज्ञान और सुख। तो हमने भी देखा था ना, क्या बात देखी थी कि जिस जीव को ईश्वरत्व कहो भगवानत्व कहो या तेरहवें गुण स्थान वर्ती जीव हो जाता है, भगवान परमात्मा बन जाता है, तो उसे अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति तो होती है। तो यहाँ दो ही बातें ली है कि भगवान आत्मा मां अतीन्द्रिय के वो आनंद नो रस छे, चैतन्य नो, चैतन्य में ज्ञान दर्शन दोनों आ गए ना, ए रस छे, यानी आत्मा में रस है पर कैसा? चैतन्य रस है, और उसको रस कहते ही नहीं, वास्तविक पुद्गल की अपेक्षा से रस है, और ये तो स्वभाव की अपेक्षा बताइए। पण पुद्गल नो, यानी पुद्गल में जो रस नाम का गुण है ये जड़ रस आत्मा में नथी, माटे आत्मा अरस छे। विश्व में छ द्रव्यो छे, तेमा जीव द्रव्य पांच द्रव्यो थी भिन्न छे, पण आई जीव द्रव्य उद्गल थी भिन्न बताऊं छे, केम के मुख्यपने जीव उद्गल माज एकत्व करीने ऊंधो पड़ियो छे, यानी वह विपरीतता धारण करे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ तो जीव जीव द्रव्य के साथ अन्य पांच द्रव्य हुए हैं, फिर भी इस जीव के पुद्गल द्रव्य के साथ ही एकत्व बुद्धि है, पुद्गल द्रव्य के साथ ही स्वामित्व बुद्धि है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, यह जो क्षोभम ज्ञान है यानी मति श्रुत ज्ञान है, उस मति श्रुत ज्ञान की ऐसी थोड़ी सी उसके कैरेक्टर ऐसे हैं कि वह ज्ञान जब मति श्रुत ज्ञान जब परिणत होता है तो उस परिणमन में शर्त होती है कि उसको इंद्रियों की गरज लगती है। कहो वो तो कहना तो यह है कि इंद्रियों के माध्यम से वो जानता है, जानता तो आत्मा स्वयं, लेकिन उसको मीडिया चाहिए और वह मीडिया जो है वह इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाता है वह तो बाह्य पदार्थ ही जाने जाते हैं। स्व का वेदन करते वक्त वह इंद्रिय ज्ञान कार्यरत नहीं होता। अब क्या कहते हैं, जब इंद्रियों से जानेगा तो विश्व में एक पुद्गल द्रव्य छोड़कर अन्य सभी द्रव्य अरूपी हैं, मतलब इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होते। तब ग्राह्य होने वाला कौन सा, तो पुद्गल ही है। तो इसको जो कुछ इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है वह पुद्गल ही जाना जाता है, तो उसके इन पुद्गल द्रव्य के साथ ही एकत्व बुद्धि है। इसलिए यहां अन्य द्रव्य की बात न लेते हुए तो इसलिए कह रहे हैं, देखो विश्व में छह द्रव्यो छे एस्टेब्लिश करा रहे, तेमा जीव द्रव्य पांच द्रव्यो थी भिन्न छे, ये तो निश्चित है, पण अहीं जीव द्रव्य पुद्गल थी भिन्न बतावू छे। केम केम के मुख्यपणे जीव पुद्गल में ज एकत्व करे छे अने तेनाथी एने विपरीतता थाय छे, एटले ऊंधो पड्यो छे। शरीर वाणी मन इंद्रियो इत्यादि हूँ छू एम विपरीत मानी बैठो छे, तेने आत्मा जे त्रिकाल चिदानंद रसमय वस्तु छे तेमा पुद्गल नो रसगुण विद्यमान नथी तेथी ते अरस छे, एम अहीं शरीर आदि थी भेद ज्ञान करायवू छे। आदि थी में अभी जितने बताए उतने भी समझ लो, और उसके अलावा हम जिसमें जिसमें एकत्व बुद्धि करते हैं उन सबको समझना चाहिए। हवे बीजा बोलमा कहे छे के पुद्गल द्रव्योना गुणोती पन भिन्न होवाथी पोते पन रस गुण नथी माटे अरस छे। क्या कह रहे हैं देखो, अभी आप आगे बता समझा रहे। पहला बोलमा पुद्गल द्रव्य थी भिन्नपनानी बात ली थी, और अभी क्या कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्योना गुणोती पन भिन्न हुआ थे, यानी पहले द्रव्य से भिन्न था यह आत्मा, अब यह आत्मा उनके द्रव गुणों से भिन्न है, ऐसी बात बता रहे हैं। क्या कहा फिर से, पुद्गल द्रव्य ना गुणों थी पन भिन्न हुआ थी पोते पन रसगुण न थी। ये देखो हमने देखा था ना कि अरस नाम का जो कुछ शब्द है, आत्मा अरस है ऐसा कहा गया, तो वो अरस किस किस पद्धति से नहीं है ये हमने देखा था कि छह प्रकार से उसकी सिद्धि की थी कि इसलिए मैं अरस हूँ, यानी आत्मा अरस है इसलिए आत्मा अरस है, छह प्रकार से उसकी सिद्धि की थी। तो पहले प्रकार में तो क्या बताया कि ये पुद्गल द्रव्य जो है उससे भिन्न होने के कारण मैं अरस हूँ, अभी कहते हैं पुद्गल द्रव्य के जो गुण है वो गुणों से भी मैं भिन्न हूँ। तो फिर से पुद्गल द्रव्य ना गुणों थी पन भिन्न हुआ थी पोते एटले हूँ पन रस गुण नथी माटे अरस छे पोते, यानी यहाँ आत्मा। पहला बोल मा पुद्गल द्रव्य थी भिन्नपना नी बात लीधी हती, आ बोल मा पुद्गल द्रव्य ना गुणों थी भिन्नपना नी बात लीधी छे।
देखो जैसे आत्मा अपने गुणों से अभिन्न है, ज्ञान से अभिन्न है ना, तो आत्मा को भी ज्ञान कह देंगे, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, क्योंकि वो अपने गुणों से अभिन्न है। वैसे पुद्गल के गुणों से अभिन्न नहीं है, भिन्न है, इसलिए उसको रस नहीं कह सकते, उसको अरस कहेंगे। तो अभिन्नता के कारण गुण पर वो उपचार, वो द्रव्य और गुण को अभिन्न करके जैसे आत्मा को ज्ञान भी कह देते हैं, वैसे यहाँ पुद्गल को एक समझो रस कह भी सकेंगे पुद्गल को, क्योंकि वो रस गुण से अभिन्न है। परंतु जो आत्मा जो है पुद्गल के जो गुण है अभी तो यहाँ रस की बात चल रही है, बाद में वो रूप की बात करेंगे, यानी वर्ण की बात करेंगे, स्पर्श की करेंगे, गंध की करेंगे, तो यहाँ वो उसके गुणों से भिन्न है, इसलिए उसको अरस कहा है।
थर्ड लाइन, आत्मा चैतन्य रस स्वरूप वस्तु छे, ते पुद्गल द्रव्यना गुणोति भिन्न छे, तेथी पोते रसगुण नथी, माटे अरस छे। अभी वही अरस का तीसरा बोल बता रहे, परमार्थे पुद्गल द्रव्यनु स्वामीपणु पण तेने एटले आत्माने नहीं होवाथी ते द्रव्येन्द्रियना आलंबन वड़े पण रस चाखतो नथी, माटे अरस छे। अब क्या समझा रहे, देखो देखो, जब तक हम लड्डू कहो या करेला कहो, जीभ पर नहीं रखते, रसनेन्द्रिय पर नहीं रखते, तब तक हमें उसका स्वाद नहीं आता है, ऐसा हम मानते हैं ना। क्या ये मान्यता सही है क्या गलत है? हाँ प्रतिभा से, देखो हमने नमक ऐसा थाली में रखा है तो हमें वो खारा है क्या नहीं कुछ पता लगता है क्या? उठा के जीभ में रखे हाँ, और उसके बगल में सफेद कुछ हो मुंह में डाले, अरे ये तो शक्कर है और ये तो नमक है, तो ये जो उसका मीठापन है या खारापन है, जब तक रसनेन्द्रिय पर नहीं आता है तब तक हमें उसके ज्ञान नहीं होता है। हाँ कैसा है? हाँ हाँ देखो देखो, आप ये कहती हैं कि ये जो ज्ञान जो हो रहा है वह ज्ञान तो अपने स्वयं के कारण हो रहा है, उस समय मीठा का ज्ञान होना और निमित्त रूप से वहाँ मीठा यानी शक्कर का वहाँ आना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो शक्कर वहाँ पर आई इसलिए उस ज्ञान को ज्ञान हुआ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि पर पदार्थ से मुझे ज्ञान होता है। हाँ अभी आपको इसका ज्ञान हुआ तो आपने दिखाया इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसी बात नहीं है। भावना बेन आपको लगता होगा ये क्या नई बात सुनने को मिल रही है। देखो अभी हमने पहले क्या देखा था, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन भी स्वतंत्र होगा, जब ही तो उस द्रव्य को स्वतंत्र कहने में आएगा। अगर मेरा परिणमन किसी दूसरे के अधीन होगा तो फिर मैं परिणमन कैसा करूंगा? अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वह अन्य किसी के कारण से होता होगा तो मुझे तो आत्मा में जाने की गरज नहीं, उसके पैर छू लो उसको खुश करो तो मुझे आत्मानुभव हो जावे, ऐसा होगा क्या? ख्याल में है ना। और हम तो ऐसा ही मानते हैं कि सामने कोई चीज है इसलिए उस चीज के कारण से मुझे ज्ञान होता है, पर ऐसी पराधीनता आत्मा में नहीं है। उसका जो ज्ञान गुण है, उसकी जो श्रद्धा, उसका जो श्रद्धा गुण है, उसमें जो चारित्र गुण है, उनका परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने अपने से होता है। तो सामने मान लीजिए कि हमने इसको देखा और ज्ञान हमें इस माइक का हुआ, तो माइक सामने था इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा जरा भी नहीं है। और सारी दुनिया ऐसा मानती है, और आप भी किसी को बताना नहीं जाके, नहीं तो तुमको बोलेंगे किसके पास गए आप क्या? कि जब तक हमें ऐसी योग्यता समझने की और समझाने की नहीं होती है, इन अन्य जीवों को बिल्कुल सिखामण अपने की क्या बोलते हैं, जल्दी मत करना, फिर बाद में आप भले बताओ जब आप स्वयं इतने परफेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसी नई नई बात आपके लिए आएगी, यहाँ बहुत आएगी। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, परमार्थे यानी निश्चय से ये पुद्गल द्रव्य है उसका स्वामी आत्मा नहीं है। तो ये जो जीव जो है वह तो क्या है, द्रव्येंद्रिय है ना, तो वह पुद्गल की है, तो पुद्गल के कारण जीव को ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए समझा रहे हैं, पुद्गल द्रव्यनु स्वामीपणुपन तेने नहीं हुआ थी, ते यानी आत्मा नहीं हुआ थी, आत्मा ने नहीं हुआ थी, द्रव्येंद्रिय ना आलंबन वड़े पन रस चाखतो नथी, तो रसनो जे ज्ञान थाय छे, चाखे छे एटले स्वादन अनुभवन करे छे, તે રસ ચાખે છે એટલે ત્યારે એને એવું જ્ઞાન થાય છે કે આ રસ આવો હતો. અભી રસગુણ કી ભી પાંચ પર્યાય હોતી હૈ યે ભી તો જાણતે હૈ ના હમ. હા કોણ સી હોતી હૈ ભાઈ હમારે સૌભાગચંદજી, રસગુણ કી પાંચ પર્યાય કોણ સી હૈ? હા બહુ અચ્છા, કશાય હા હા ચરપરા. હા ગુજરાતી મેં આપ જાણતે હૈ ક્યા બોલના ઇસકો? હિન્દી યાદ હો ગયા, બહુ અચ્છા. ખટ્ટા યાને ખાટું, મીઠું, કડવું, તીખું અને તુરુ તુરુ, યે ઉસકી પર્યાય હૈ. તો વો ઉસ પર્યાય રૂપ જો કુછ જ્ઞાન હોતા હૈ વો જ્ઞાન ગુણ કા સ્વયં કા પરિણામ હૈ. નિમિત્ત રૂપ સે આંવલા ખાય તો તુરુ લગે, ક્યા બોલ દીયા આપ લોગ? એસા હોતા હૈ ના. વસ્તુપણે જીવને પુદગલ દ્રવ્યનું સ્વામીપણું નથી. વસ્તુપણે યાને દ્રવ્ય દોનો જુદે જુદે હૈ ના, તો વો પુદગલ દ્રવ્ય કા સ્વામી યે જીવ દ્રવ્ય હોઈ નહીં સકતા હૈ. આ જડ ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી આત્મા નથી, તેથી દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયોના આલંબન વડે તે રસ ચાખતો નથી. આ જીભ છે તેનો સ્વામી આત્મા નથી. શું કીધું? હું બોલતે ના ભાઈ જીભ સંભાળ કે ચલા ના, હા એસા બોલ. યે તો લૌકિક મેં જરૂર કહેંગે, યહાં તો કહે રહે કે આ જીભ છે તેનો સ્વામી આત્મા નથી. એ તો પૌદ્ગલિક છે, તેથી આત્મા જીભને હલાવે અને તે વડે રસને ચાખે એ વાત વાસ્તવિક નથી. એને એવો વાત સાચી નહીં હૈ. હા ક્યા કહેતે પ્રતિભા થઈ, કુછ સાલ કે પહેલે અગર હમ આપકો યે બતાતે તો આપ માનતે થે ક્યા? હા યે અરવિંદભાઈને હમે કહાં ભુલાયા, એસા લગતા થા. અભી આપ કહેંગે ક્યા કહે રહે? દેખો યે તો હમ એસા હી માનતે ના કે આત્મા જીભને હલાવે છે. હું જીભ હલાવ ત્યારે તો બોલું છું ને. તો ક્યા જીભ હલને સે બોલતા હૈ જીવ? તો કોણ બોલતા હૈ? જીવ બોલતા હૈ કે નહીં? તો હા બોલો બોલો. ભાષા વર્ગણા, તો જીવ કી ભાષા વર્ગણ હૈ? તો હા, તો એ જો આવાજ જો નિકલતી હૈ વહ તો ભાષા વર્ગણા કા કાર્ય, ઓર જીભ જો હલતી હૈ વહ આહાર વર્ગણા કા કાર્ય. ઓર દો વર્ગણાઓ મેં કોણ સા અભાવ હૈ? હા દો વર્ગણા કહે રહા હું મેં, અન્યોન્ય અભાવ હૈ. બહુ અચ્છા બહુ અચ્છા. હા જી શું કીધું? કિસને? આપને ભાઈ? દેખો વર્ગણા જો હૈ ને વો સ્કંદ હૈ, સ્કંદ તો પર્યાય રૂપ હૈ. ઓર જબ દ્રવ્ય કહેંગે, પુદગલ દ્રવ્ય કી બાત હોગી તો અત્યંત અભાવ મેં ચલી જાયેગી. દેખો કૈસી બાત હૈ કે જોનો પુદગલ હૈ, કોણ સી ભાષા વર્ગના જો શબ્દ રૂપ સે પરિણત હોતી હૈ વહ, ઓર યહ જો ઔદારિક શરીર હૈ ને વહ તો આહાર વર્ગના સે બના હૈ, તો યે જીભ ભી તો જો હૈ વહ ભી આહાર વર્ગના હૈ. તો દોનો સજાતી હૈ, પુદગલ પૌદગલિક હૈ, પુદગલ પુદગલ હૈ, ફિર ભી વો એક દૂસરે સા કામ નહીં કરતી. તો આહાર વર્ગના ઓર આત્મા મેં તો અત્યંત અભાવ હૈ, તો આત્મા જીભ કો હલાવે યે બાત હી નહીં હો સકતી. તો ઇન દોનો મેં અત્યંત અભાવ, ઓર જીભ હાલે ત્યારે શબ્દ બહાર નીકળે એસા માને તો ઉસને અન્યન્ય અભાવ કો નહીં માના. દોનો બાતે દેખી યહાં પર ક્યા લિખા હૈ? દેખો દેખો, આ જીભ છે તેનો સ્વામી આત્મા નથી, એ તો પૌદ્ગલિક છે, તેથી આત્મા જીભને હલાવે યે તો અત્યંત અભાવ મેં ચલા ગયા, અને તે વડે રસને ચાખે વો ભી તો યહાં મેં જો બાત બતાવી ભાષા નીકળતી વો બાત આઈ નહીં હૈ. હા તે વડે રસને ચાખે, યહાં તો અરસ કી બાત બતાની હૈ ના, તો ભાષા વર્ગણા કી બાત લી નહીં હૈ. એ વાસ્તવિક નથી એટલે વો સચ બાત નહીં હૈ. આમ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયોના આલંબન વડે આત્મા રસ ચાખતો નથી, માટે તે અરસ છે. એ अरस की जो सिद्धि हो रही ना, वो तीसरे प्रकार से यहाँ आत्मा अरस क्यों है ये बात को हमें बताया। चौथो बोल, पोताना स्वभावनी दृष्टि थी जो आमा आवे तो, यानी हम, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा स्वभाव कैसा है, तो कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। परिपूर्ण स्वभाव होता है ना, स्वभाव कभी अधूरा नहीं होता है, स्वभाव हमेशा परिपूर्ण ही होता है। तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव कैसा है, तो केवल ज्ञान स्वभाव उसका सच स्वभाव है, वो पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त होते उसकी बात नहीं है। ये त्रिकाली कैसा है, केवल ज्ञान स्वभावी है, तो पोताना स्वभावनी दृष्टि में जो दृष्टि थी जो हम आवे तो, ये अभी तो क्या कहते हैं, क्षायोपशमिक भावनोपन तेने अभाव हुआ थी, यानी क्षायोपशमिक भाव वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो इसलिए वो क्षायोपशमिक भाव भी त्रिकाली स्वभाव में नहीं होने से क्षायोपशमिक भाव का भी आत्मा में अभाव है, इसलिए एम हुआ थी। दूसरी लाइन, ते भावेन्द्रिय ना आलंबन वड़े पन रस चाकतो नथी माटे अरस छे, ये स्वभाव में वो भाव है ही नहीं तो उससे रस का ज्ञान हो जाए, ये भी बात कहते स्वभाव में नहीं है इसलिए आत्मा अरस छे। पोताना स्वभावनी दृष्टि थी एटले त्रिकाली शुद्ध न्यायक भावनी दृष्टि थी जोइए तो क्षयोपशम भावनोपन जीवने अभाव छे। अभी थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछूं क्या, ये मति श्रुत अवधि और मनपरिय ज्ञान जो है वो कैसे भाव है, भाव भाव क्षयोपशम भाव ख्याल में, और वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बात समझाना चाहते हैं। देखो, मति श्रुत अवधि ने मन परिय ज्ञान ए चार ने शास्त्र में विभाव गुण कहया छे, ये गुण कहया छे, यानी वहां तो एक्चुअली वो पर्याय है, फिर भी वो आत्मा का स्वभाव नहीं होने के कारण उपचार से इसको विभाव गुण कहया। ए चारे सम्यक ज्ञान छे हो, तो सम्यक ज्ञान तो पर्याय में होगा ना, अशुद्ध निश्चय नहीं थी ए चार नो जीव ने संबंध छे, अशुद्ध निश्चय नहीं यानी क्या कि यह तो आत्मा के ही पर्याय है, इसलिए उसको भेद किया ना, तो उसको कहा कि वो अशुद्ध निश्चय नहीं है, और एक प्रकार से उसको व्यवहार भी कहेंगे, लेकिन यहाँ तो शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने भी घटित किया है, तो ये चारे सम्यक ज्ञान छे वो अशुद्ध निश्चय नहीं थी, चार नो जीव ने संबंध जे तो पन शुद्ध निश्चय नहीं थी, यानी स्वभाव की अपेक्षा से जब हम देखेंगे तो कहते हैं काई संबंध न थी, यानी मन परे ज्ञान आदि जो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि यहाँ मन परे ज्ञान को भी लिया ना, तो वह तो सम्यक ज्ञान वालों को ही होगा, मुनियों को ही होता है ना, तो इसलिए अन्य तीन को भी सम्यक ज्ञान की पर्याय ये बात समझाई। आई कहे छे के जे भावेन्द्रिय द्वारा जणाय छे ते भावेन्द्रियो नो ज परमार्थे आत्मा मा अभाव छे, तो उसके द्वारा उसका ज्ञान होता है, ये जो कहने में आएगा तो वो रस का जो ज्ञान होता है ऐसा हम मानेंगे तो बात सही नहीं है, क्योंकि वो बराबर है, पर यहाँ तो देखो अरस गुण जो है वह आत्मा का स्वभाव है ना, तो उस स्वभाव की अपेक्षा से बात चल रही है। देखो जहां जो बात जिस प्रकार से चलती रही है उस अपेक्षा से हम देखेंगे तो बात वैसी ही है, आप जो कह रहे हैं वो अपेक्षा से हम देखेंगे तो आप जो कहते हैं वो भी सही है, लेकिन यहाँ अपेक्षा जुदी है। देखो फिर से ये नीचे से चौथी पांचवी लाइन है, कहे छे के आगे जे भावेन्द्रिय द्वारा जणाय छे ते भावेन्द्रियो नोज परमार्थे आत्मा मा अभाव छे, वो स्वभाव में है ही नहीं, आत्मा भाव जो पर्याय में नथी एम नथी, क्योंकि अशुद्ध निश्चय से है ऐसा कह रहे, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं से देखा जाए तो वो नहीं है। देखो देखो, जैसा हम समय सार में पढ़ते हैं कि यह जो राग द्वेष के परिणाम है वो आत्मा में है ही नहीं, क्यों कि यहां तो दृष्टि का विषयभूत ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव भाव है उसकी अपेक्षा से वह राग द्वेष के परिणाम, वहां तो उसको डायरेक्टली वो तो पुद्गल के हैं ऐसा बता दिया। लेकिन वही बात हम क्या प्रवचन सार में देखेंगे तो वहां तो ज्ञान प्रधानता की बात है, वहां तो कहेंगे उसका कर्ता आत्मा है, आत्मा स्वयं राग है, उस रूप परिणत हुआ है ना। तो अपेक्षा जहां जो लगे उसको हमें देखना चाहिए। तो यहां कह रहे कि भावेंद्रिया जो छे ते आत्मा में नहीं तो इनाथी जणाय छे एवो जे रस छे ई क्या हो, એટલે એ અરસ છે। શ્રી સમયસાર ગાથા 31માં આવે છે કે ભાવેન્દ્રિય છે તે પોતાના વિષયોને ખંડ ખંડ જાણે છે, અર્થાત તે જ્ઞાનને ખંડ ખંડ રૂપ જણાવે છે, એને કોણ ભાવેન્દ્રિય। જ્યારે આત્મા હવે ત્રિકાળી સ્વભાવ કેવો છે, એક અખંડ ન્યાયક ભાવ રૂપ છે, ઓર વો ઉપર ક્યાં ભાવેન્દ્રિય કહેશે ખંડ ખંડ હૈ और ये अखंड है, माटे भावेंद्रिय निश्चय थी आत्मानु स्वरूप नहीं। अब बात ख्याल में आ गई, खंड वस्तु अखंड स्वरूप केम होए। त्या गाथा 31 कहूं छे, अभी पहले जो हमने पढ़ी है उसका यहां रेफरेंस दे रहे हैं कि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय अने तेमना विषयों ने जे जीते તે જીતેન્દ્રિય છે, તેને જીતવું એટલે કે તે સર્વ પોતાથી ભિન્ન છે, અર્થાત તે પરજ્ઞેય છે એમ જાણવું। યાને જીતના યાને ક્યા કરના, તો સમજા રહે હૈ કે દ્રવ્યેન્દ્રિય કો જીતના હૈ। એક તો હમ કહેંગે કે ભાઈ દ્રવ્યેન્દ્રિય તો પૌદ્ગલિક હોતી હૈ, ઉસકો ક્યા જીતના હૈ, ક્યોંકિ વો તુમ ઉસકો તો સ્પર્શ નહીં કર સકતે, વો તો અત્યંત અભાવાત્મક હૈ, तो उसको जीतना है नहीं क्या। अब यहां कहते कि भावेंद्रिय को भी जीते आप, और आगे से आगे उसके कहते कि तेमना विषयों, अभी विषयों वो तो बिल्कुल अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, उसको तो कैसा जानेंगे जीतेंगे। तो कहते कि जीतवू एटले के ते सर्व यानी द्रवेंद्रिया भावेंद्रिया और उनके विषयभूत पदार्थ ये सर्व पोताती भिन्न छे, यानी અર્થાત તે પરજ્ઞેય છે એમ જાણવું। એ જ્ઞેય છે, જાણવામાં આવશે, પણ આ જીવ એવો છે કે એમાં અટવાઈ જાય છે, એમાં જ પોતાપણું માને છે, તો કે તું હારી ગયો, અને એનાથી તું ભિન્ન છે એમ જ્યારે માનીશ તો એને એના ઉપરથી જય પ્રાપ્ત કર્યો, તેને જીતેન્દ્રિય જીવ। જ્ઞેય ન્યાયકની એકતા તે સંકર દોષ છે। હા, યાને ક્યા કહા ભાઈ, યે ક્યા બતાના ચાહતે હૈ સૌભાગચંદજી, યાદ હૈ આપકો, જ્ઞેય ન્યાયકની એકતા તે સંકર દોષ છે, ક્યા બતાના ચાહતે હૈ, કિસકો યાદ। तो संकर दोष यानी क्या हो, क्या संकर दोष हुआ, किसमें किसमें। हाँ देखो, ज्ञेय भिन्न है, ये परज्ञेय की बात हो रही ना, तो ज्ञेय भिन्न है और ज्ञायक जानने वाला आत्मा भिन्न है, तो वह दोनों एक में है ऐसा वह मानता है जानता है, तो उसने संकर दोष किया, दो जिन चीजों को एकत्रित मिलाया તેને શંકર દોષ કહેવાય। ભાવેન્દ્રિય તેનો વિષય કોણ, દેવગુરુ શાસ્ત્ર આદિ તથા દ્રવેન્દ્રિય એ સર્વ પરજ્ઞેય છે। દેખો ભાઈ, યહાં તો દેવગુરુ શાસ્ત્ર કો ભી પરજ્ઞેય મે રખા, યે ક્યું રખા, કે જિન્હોને યે માર્ગ બતાયા હૈ એસે ભગવાન કો ભી એસા પરજ્ઞેય મે ડાલ દિયા। હા, कब आपको परिंदे में डालना है कि जब हमें स्व का अनुभव करना है तो वो पर पदार्थ है तो पर पदार्थ, लेकिन हम जब हमें अन्य अपने स्वरूप का आश्रय नहीं हो रहा है तो हम तो देवगुरु शास्त्र की मतलब उनकी विनय करेंगे, उनका आश्रय करेंगे, उनका अवलंबन लेंगे, पूजा आदि करेंगे, सब बातें ठीक है, लेकिन वो जब अपने स्वरूप में अपने को लीनता करनी है तो वो भी हमारे लिए परज्ञेय हो गए, ऐसा कह रहे। देखो आवा परज्ञेय नु क्या भावेन्द्रिय ने तेना विषय कौन, थर्ड लाइन देवगुरु शास्त्र वगैरह वगैरह ऐसा लिखा, और द्रव्येन्द्रिय ये सर्व परज्ञेय छे, स्वज्ञेय वो जो आत्मा छे एमज एकता करवी हो त्यारे आ परज्ञेय तरफ लक्ष्य जायज नहीं, एम के आवा परज्ञेयनु यथार्थ ज्ञान पोताती थाय छे, पण कोने के जेने न्यायकनु स्वरूप ग्राही ज्ञान थाय तेने, यानी क्या कहते हैं न्यायकनु यानी अपना जो जानन स्वभाव है उस स्वभाव का जो उस स्वरूप है उसका जो ग्रहण करता है ऐसा जो ज्ञान है उस रूप जो परिणमित होता है उसके लिए ये सब यानी देव गुरु शास्त्र परज्ञेय हो जाते हैं। देखो फिर से आप कुछ पूछना चाहती बहन, देखो परज्ञेय नु यथार्थ ज्ञान पोताती थाय छे, ये भी परज्ञेय का ज्ञान जो सच्चा ज्ञान कब कहा जाएगा कि जब उसने स्व और पर में भेद किया है और यथार्थ रूप से जाना है, तो इसलिए कहते पन कोने कि यथार्थ ज्ञान कोने था है? तो जेने न्यायक नु स्वरूप ग्राही ज्ञान हो, यानी न्याय का जैसा स्वरूप है स्वभाव है उसका ज्ञान जिसको हुआ है ऐसा स्वरूप जिसने ग्रहण किया है यानी ज्ञान किया उसका उसको जाना है तेने आवु परज्ञेय नु यथार्थ ज्ञान होई छे। आई कहे छे कि भावेन्द्रिय, ये तो गाथा 31 में जो बात चली थी उसका हमें यहाँ रेफरेंस दिया है। अब समझाते हैं स्वामी जी कि आई अब यहाँ क्या चल रहा है अपने 49 नंबर के गाथा में कि भावेन्द्रिय परज्ञेय हुआ थी आत्मा ना स्वभावभूत न थी। ये आपने एक बार प्रश्न पूछा था ना प्रतिपदे, देखो उसका उत्तर यहाँ पर आया है। क्या कहते हैं भावेन्द्रिय क्या है, परज्ञेय है, आत्मा ना स्वभावभूत यानी आत्मा के स्वभाव जैसे नहीं है, स्वभावमय नहीं है, स्वभावात्मक नहीं है, अने तेथी आत्मा भावेन्द्रिय ना आलंबन थी पन रस चाखतो नथी, माटे अरस छे। केवी अद्भुत भेद ज्ञान नी वात, आवी वात ने अभ्यास करीने समझे नहीं अने अनेक प्रकारना क्रियाकांड करे पन तेथी शू। ये स्वामी जी का जो तेथी शू है ना, वैसी बात मैंने अमेरिका के एक व्यक्ति से सुनी, मैंने बताई थी बात आपको। वहां पर एक भाई साहब है हमारे स्नेही महावीर, डॉक्टर महावीर शाह, वो इतना पैसा है उनके पास, 100 एकड़ जमीन वहां की उन्होंने खरीद के रखी है, वो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक तैयार किए हैं सरोवर, उसमें राजहंस पक्षी छोड़े हैं, उनके जो जंगल है उसमें हिरन घूमते हैं खरगोश घूमते हैं। बोलते मेरे पास 8 गाड़ी है, वॉट नेक्स्ट, उनका क्या प्रश्न है, अभी मैं चाहूं तो और 10 गाड़ी खड़े कर सकता हूं, बट वॉट नेक्स्ट, मैंने इतना पैसा कमाया तो वॉट नेक्स्ट, तो तेथी शू, आटलू बधु प्राप्त करियूं तेथी शू। तो उसने बताया वॉट नेक्स्ट, दिनेश भाई मैंने क्या किया है यहाँ आके, क्या मैंने कमाई की, 35 साल से मैं यहाँ रहे, सारी सुख सुविधाएं हैं मेरे पास, लेकिन मैं वापरता हूँ तो एक ही गाड़ी एक टाइम, और दोनों घर में मियाँ बीवी है और बच्चे हैं तो अपने अपने कामों में लगे हैं, एक शादी हो गई ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो कहते कि वॉट नेक्स्ट, अभी इससे मुझे क्या है, या स्वामी जी वही तो कह रहे हैं, ये आप सच बात नहीं जानते हो, क्रियाकांड में अटके हो, पण तेथी शू एटले तमने एनाथी हूँ वळे, क्या प्राप्त होने वाली है तुम्हें। ये देखो मतलब सिर्फ शब्दों का फर्क है, स्वामी जी तो सम्यक दृष्टि थे, ये तो होगा नहीं होगा वो परमेश्वर जाने, लेकिन उनकी वहां रहते हुए भी ऐसी वृत्ति है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं इससे, अभी छोड़ा भी नहीं जाता, छुटता भी नहीं कहो और मोह भी नहीं छुटता कहो, दोनों एक ही बात है, पर अंदर तो ये ऐसी लगी ना बात कि ते थी शू अवे एना थी शू। पांचवो बोल, अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सकल विषयों ना विशेषो मां साधारण एवा एकज संवेदन परिणाम रूप तेनो स्वभाव हुआ थी, एटले आत्मानो स्वभाव हुआ थी, ते केवल एक रस वेदना परिणाम ने पामी ने रस चाखतो नथी माटे अरस छे। अभी क्या कह रहे हैं, यह आत्मा का जानना 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 तो कार्य चल रहा है, अब जब यह मतिशुद्ध ज्ञानधारी है तो ये अन्य अन्य इंद्रियों से जान रहा है, अब ये जो रस, जो उस रस का ज्ञान हो रहा है उसे, तो उसमें माध्यम तो मान लो रसनेन्द्रिय है, अभी वर्ण देख रहा है तो उसमें चक्षुनेन्द्रिय है, सूंघ रहा है तो उसमें घ्राणेन्द्रिय है, सुन रहा है तो श्रोत्रेन्द्रिय, यानी अन्य अन्य इंद्रियों से जान रहा है, जानना तो उसका निरंतर चालू है। अब इतनी बात हमारे ख्याल में आते ही आगे क्या कहते हैं वो समझेंगे, देखो फिर से ऊपर से, सकल विषयों ना विशेषों मा, यानी ये सकल विषय यानी पांचों ही इंद्रियों के जो विषय है, ऐसे विषयों ना विशेषों मा, यानी उनकी जो जुदी जुदी मतलब अनेक विशेषता है, तो उसमें क्या साधारण एवा एकज संवेदन परिणाम रूप, यानी उनका ज्ञान होने रूप, ख्याल में आया, तेनो स्वभाव हुआ थी, यानी हरेक को जानने का उसका स्वभाव होने से, ते यानी ये आत्मा केवल एक रस वेदना परिणाम ने पामी ने रस चाखतो नथी, तो गंध भी, गंध को भी सूंघता है, स्पर्श को भी अनुभवता है, अन्य अन्य जो बातें वो होती है, इसलिए वो सिर्फ रस को ही नहीं चाखता है, अन्य को भी चाखता है, इसलिए आत्मा अरस छे, आत्मा अखंड न्यायक भाव रूप वस्तु छे, न्यायक भाव रूप यानी जानना 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 जानने वाला ऐसा वह स्वयं है, ते पांचे इंद्रियों ना विषय ने अखंडपने जाननारो छे, एकज इंद्रिय विषय नु वेदन अर्थात जानवू एवो आत्मानो स्वभाव नथी, पांचे इंद्रिय ना ज्ञान नु संवेदन एटले जानवू अनुभवू, अनुभव कहो संवेदन कहो वेदन कहो जानना कहो एक ही बात है, पांचे इंद्रियना ज्ञान नु संवेदन एक साथे थाय एवो आत्मानो स्वभाव छे, तेथी ते केवल एक रस वेदना परिणाम, यानी ये रस का वेदना यानी अनुभवना, ये वेदना यानी वो हमको दुख होता है वो वेदना की बात नहीं कर रहा है, रस का वेदन रसन वेदना परिणाम ने पामी ने अर्थात एक रसनाज ज्ञान ने पामी ने रस चाखतो नथी माटे अरस छे, ये बात ख्याल में आ गई। अबे पांच बोल चाली गया, हवे छठो बोल, सकल ने न्यायक ना तादात्म्य नो निषेध होवा थी रसना ज्ञान रूपे परिणमता छता पण पोते रस रूपे परिणमतो नथी। अभी क्या बताना चाहते, देखो यहां पर ऐसा समझाना चाहते हैं, ये ज्ञान जो है वो किसको जानता है, कहते हैं जिसका उतना मतलब उसका ज्ञान जितना जाने उतने सब ज्ञेय पदार्थों को जानता है, यानी जिस जिसको यह ज्ञान जानता है उसको ज्ञेय कहने में आता है। अब यहां क्या समझाते हैं कि जो ज्ञेय है यानी जो जानने में आ रहे पदार्थ है और जो ज्ञायक है यानी जानने वाला जो है वो कभी एक मेक नहीं होते, तो एमना तादात्म्यनो यानी एक मेक पनानो निषेध हुआ थी, नहीं ख्याल में है, आप अग्नि को देख रही हैं, तो आपकी आंखें अग्नि रूप हो गई कि नहीं? हाँ, क्योंकि क्या है कि अग्नि तो जाने, ये तो दोनों पुद्गल हैं, लेकिन ज्ञान अग्नि को जाने तो ज्ञान अग्नि रूप हो जाएगा कि नहीं? इस तरह कहते हैं, ये दोनों का एकमेक पना होना इसका निषेध है। अब मान लीजिए कि हमने रास्ते में कीचड़ देखा, कोई गंदगी देखी, तो क्या हमारा ज्ञान गंदा हो गया? ज्ञान तो वैसा का वैसा है। तो जानने वाला जो ज्ञायक यानी ज्ञान और वहां ज्ञेय, इनका तादाद में नहीं होता है। जानने में तो सब आता है। क्या कह रहे, देखो, सकल यानी संपूर्ण जो कुछ है, ज्ञेय जो है और वो ज्ञायक यानी जानने वाला, ये दोनों का तादात्म्यनो निषेध हुआ थी, यानी वो एकमेक नहीं होते हैं, तादात्म्य होने का निषेध है। इसलिए रसना ज्ञान रूपे परिणमता छता है, यानी रस का ज्ञान हो रहा है फिर भी पोते यानी स्वयं रस रूपे परिणमतो नथी, यानी वह रस रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान रस रूप नहीं होता है। दूसरी भाषा में कहो तो हमेशा ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान कभी गेय रूप होता ही नहीं। गेय हमेशा गेय रूप ही रहता है, वह ज्ञान रूप होता ही नहीं। ये परगेय की अपेक्षा से बात है, वो ख्याल में है आपको? ख्याल में है? क्या कह रहे, देखो फिर से, सकल ज्ञेय ज्ञायक ना तादात्म्यनो निषेध हुआ थी, यानी ये एक फंडामेंटल रूल है। कौन सा रूल है? ज्ञेय और ज्ञायक यानी जानने वाला जो ज्ञान है वह कभी भी एक में एक नहीं होते, एक रस नहीं होते। एक रस शब्द है गुजराती में, गुजराती समझ जाएंगे ना, एक रस यानी तादात्म्य हो जाना, अभिन्न हो जाना। तो कहते हैं कि ये दोनों का एकमेक होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एनो निषेध छे। ऐसा होने से रस रसना यानी जीव नहीं लेना, रस का ऐसा लेना हो, रसना ज्ञान रूपे परिणमता छता, यानी अभी ज्ञान में क्या आया है कि ये रस का ज्ञान उसे हुआ है, छतापन पोते यानी आत्मा रस रूपे परिणमतो नथी, यानी वह ज्ञान जो है कहो या आत्मा कहो वो रस रूप होता ही नहीं है। इसलिए माटे अरस छे यानी आत्मा अरस क्यों क्यों है, ऐसी हमें जो छह बातें बताई है उसमें से ये छठी बात चल रही है। जो विश्व आखू ज्ञेय छे अने भगवान आत्मा ज्ञायक छे, सर्वज्ञेयो ने जाणवानु ज्ञायक आत्मानु पोतानु सामर्थ्य छे, तेथी ज्ञेय न्यायिक संबंध नो व्यवहार होवा छता ज्ञेय न्यायिक ना तादात्म्य नो एटले एक रूप पना नो निषेध छे। एटले ज्ञेय ने जाणवा छता न्यायक ज्ञेय रूपे थतो नथी। ये बात समझ में आ रही ना, क्योंकि अब हमने अभी एक्सप्लेन करके देखा था। आज ये रस छे ते ज्ञेय छे अने आत्मा तेने जाणनारो ज्ञायक छे, रसरूप ज्ञेय ने जाणवा छता आत्मानु ज्ञान ज्ञेयपने एटले रसरूपे थतू नथी। यहाँ जो बताया है, यहाँ जो समझा रहे हैं कि आत्मा ने रस को जाना, अभी रस की बात तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि आत्मा ने दीवार को देखा, जाना, तो दीवार तो जड़ है और यहाँ आत्मा तो चेतन स्वभाव है, तो उसने दीवार को देखा, जड़ को देखा, तो क्या ज्ञान जड़ रूप हो जाएगा? क्योंकि वह ज्ञेय रूप नहीं होता है। ज्ञान ने जाना पर ज्ञान उस रूप नहीं परिणमेगा, वैसा रस को उसने जाना फिर भी ज्ञान जो है वह रस रूप नहीं होता है। तेमज रस ने जानता ज्ञान, ज्ञान रस, ज्ञान रस ज्ञान रूप एटले रसना ज्ञान रूप थई जतो नथी। यही बात हमने अभी देखी थी। तेमज रस एटले ज्ञेय જ્ઞાનમાં જણાતા છતાં જણાતા રસ જ્ઞાનરૂપ થતું નથી. એ દોનો રેસિપ્રોકલ હૈ, મતલબ જ્ઞેય જો હૈ વો જ્ઞાનરૂપ નહીં હોતા હૈ ઓર જ્ઞાન જો હૈ વો જ્ઞેયરૂપ નહીં હોતા હૈ. યહાં મેને ઉલ્ટા બતાયા, પહેલે ચાહીએ કે જ્ઞાન જ્ઞેયરૂપ નહીં હોતા હૈ ઓર જ્ઞેય જ્ઞાનરૂપ નહીં હોતા. જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપે જ રહે છે, રસ રસરૂપે જ છે રહે છે. જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ જ રહે છે, રસનું જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાનનું પરિણમન છે અને રસને લઈને નથી. અભી આ એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? અરે બાપરે 8:30 હો ગયે, ચલો એ કલ બતાએંગે, યહાં સે લેંગે હમ. તેમજ લિખા હૈ ના, વહાં સે લેંગે.
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण सदा देत हो.